ज्ञान जी ने अपनी समझदारी से आर्य को आयु से मिला दिया था। आर्य को समझाने के लिए आयु को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि अयान के जरिए वो थोड़ा बहुत आयु के बारे में जानता रहता था। आर्य अपनी मॉम से मिलकर खुश था, तो वहीं आर्य को अंदर लेने के चक्कर में ज्ञान जी ने रेहान को बाहर ही छोड़ दिया था। रेहान ने थोड़ी देर तक कमरे का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन ज्ञान जी ने जब दरवाज़ा नहीं खोला तो वो रोते हुए रुद्र और सिमरन के पास पहुंचा। उनके पास आरव भी था। उसे रोते हुए देखकर सिमरन दौड़कर उसके पास गई और रेहान को गोद में उठा लिया। रेहान को रोते देखकर सिमरन के चेहरे पर घबराहट के भाव थे। उसने जल्दी से उससे पूछा, क्या हुआ बेबी, आप रो क्यों रहे हो और आर्या कहाँ है? जहाँ तक मुझे पता है तुम दोनों खेलते हुए कभी फाइट नहीं करते।
बड़े दादू बहुत गंदे हैं मम्मा, उन्होंने मुझे अपने साथ खेलने के लिए रूम में नहीं आने दिया, उन्होंने आर्या को अपने साथ कमरे में लेकर कमरा बंद कर लिया, रेहान रोते हुए टूटे फूटे शब्दों में सब बता रहा था। पूरी बात जानने के बाद सिमरन को बहुत हैरानी हुई। उसने पूछा, लेकिन दादू ऐसा क्यों करेंगे, आपको कोई गलतफहमी हो गई होगी बेटा, और वो ऐसा क्यों नहीं करेंगे? अचानक आरव बीच में बोला। उनकी बातों से साफ पता चल रहा था कि उन्हें मुझसे प्रॉब्लम है। मुझसे प्रॉब्लम है तो मेरे बेटे से भी होगी, कहीं वो मेरे बेटे के साथ कुछ करना दे। लिसन, मेरे आर्या को कुछ हुआ तो मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा। आरव गुस्से में वहां से ज्ञान जी के कमरे की तरफ बढ़ने लगा। उसके पीछे पीछे रुद्र और सिमरन भी आ रहे थे। वो ज्ञान जी के साथ कोई बदतमीजी ना कर दे, ये सोचकर वो उसे रोकना चाहते थे। जैसे ही वो तीनों कमरे के आगे पहुंचे, उन्होंने देखा कि कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद था। बंद दरवाज़ा देखकर आरव ने उनकी तरफ देखकर कहा, देखा, रेहान बिल्कुल ठीक कह रहा था, मुझे ना देहरादून आने के लिए हाँ ही नहीं करनी चाहिए थी। पता नहीं अंदर उसके साथ वो क्या कर रहे होंगे, या वो अंदर होंगे भी या नहीं। आरव गुस्से में उन पर चिल्ला रहा था। आरव की तेज़ आवाज़ अंदर तक आ रही थी। आरव की आवाज़ सुनकर आयु समझ गई थी कि आरव कमरे के अंदर आने वाला है। उसने जल्दी से दोनों बच्चों को वहीं पर छोड़ा और खुद बैठ के नीचे आ गई। आरव ने कमरे का दरवाज़ा खोला तो सामने आर्य बैठा था और उसके साथ आरिशा भी। आरिशा को वहां देखकर आरव के चेहरे पर हैरानी के भाव थे। आरव जल्दी से अंदर आया और आर्य से पूछा, ये आरिशा खुराना, ये यहाँ क्या कर रही है? वहीं रुद्र और सिमरन भी अपने घर अनजान बच्चे को देखकर हैरान थे। रुद्र ने आर्य से पूछा, मैंने इस बच्चे को पहले नहीं देखा, क्या तुम इसे जानते हो? वहीं रुद्र की बात आगे बढ़ाते हुए सिमरन ने उन दोनों की तरफ गौर से देखते हुए कहा, न जाने क्यों मुझे ये दोनों बच्चे काफी हद तक देखने में एक जैसे लग रहे हैं। आई मीन उनकी आंखें देखो और फॉरहेड भी बिल्कुल एक जैसा है। वो दोनों आर्य से आराम से बात कर रहे थे। वहीं आरव आर्य की तरफ देखकर कोल्ड वॉइस में बोला, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ आर्य, आरिशा यहाँ क्या कर रही है? ये हमारे सामने वाले स्वीट में फैरी है, फिर हमारे साथ यहाँ कैसे पहुंची? कहीं तुम तो इसे छुपाकर यहाँ नहीं लेकर आए? बेड के नीचे आयु सब कुछ सुन रही थी। उसके चेहरे पर घबराहट से पसीने की बूंदें आ गई थीं। वो धीरे से बोली, पता नहीं दोनों बच्चे कैसे हैंडल करेंगे, कहीं सब सच पता ना दे। आरव के इस तरह गुस्सा करने पर आर्या और आरिशा दोनों ही घबरा गए और वो चुपचाप थे। उनके कोई जवाब नहीं देने पर आरव ने रुद्र की तरफ देखकर कहा, तुम दोनों जाओ और जाकर अपने दादू से बात करो, उनसे पूछो कि ये बच्ची यहाँ क्या कर रही है, होटल यहाँ से काफ़ी दूर है, ये अकेले यहाँ नहीं आ सकती, और इसकी मॉम, अगर उसने हम पर इल्ज़ाम लगाया कि हमने बच्ची को किडनैप किया है तो हम क्या करेंगे? रेहान सिमरन की गोद में था। वो आरिशा को एकटक देख रहा था। उसने सिमरन से कहा, पहले मैं और आर्या खेल रहे थे, हम ऊपर आए तब ये यहाँ नहीं थी, मैं दादू से बात करके आता हूँ, तुम प्लीज हाइपर मत हो और बच्चों पर इस तरह चिल्लाओ तो मत, रुद्र ने जवाब दिया। उसके जाने के कुछ मिनट बाद सिमरन भी वहां से चली गई। आरव ने कमरे का दरवाजा बंद किया और फिर आर्य से पूछा, अब यहाँ कोई नहीं है, मुझे सच सच बताओ कि ये यहाँ कैसे पहुंची? आर्य ने कुछ पल सोचा और फिर आरव से धीरे से कहा, डैड मुझे नहीं पता, ये अपनी मॉम के साथ आई थी, दादू इनको जानते हैं, उन्होंने मुझे इसके साथ खेलने के लिए बुलाया और हम खेलने लगे, प्लीज आप गुस्सा तो मत करिए, आर्य काफी घुमा फिराकर जवाब दे रहा था। आरव ने फिर आरिशा की तरफ देखकर पूछा, अच्छा तो तुम यहाँ अपनी मॉम के साथ आई थी, और कहाँ है तुम्हारी मॉम, हवा में गायब हो गई क्या? बेड के नीचे, आर्य और आरिशा एक साथ बोले। फिर उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने आयु के बारे में आरव को बता दिया था, जबकि आयु ने उन्हें इस बारे में छुपाने के लिए कहा था। आरव को जवाब देने के बाद दोनों ने अपने मुंह के आगे हाथ रख लिए थे। जैसे ही दोनों बच्चों ने आरव को बताया, आयु के दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। उसे डर लग रहा था कि आरव अब उसे किसी भी पल पकड़ लेगा। आरव ने उन दोनों की तरफ देखकर सिर हिलाया और चिढ़ते हुए कहा, मैं बेड के नीचे देख रहा हूँ, अगर यहाँ कोई नहीं हुआ तो आर्या तुम्हें इस बार मेरे गुस्से से कोई नहीं बचा पाएगा, यहाँ कबीर अयान दादी कोई नहीं है, और आरिशा तुमने झूठ बोला तो तुम्हें खुद मैं तुम्हारी मॉम के पास लेकर जाऊंगा और तुम्हारी हरकतों के बारे में बताऊंगा। आरव बेड के नीचे झुकने को हुआ, तभी आरिशा ने उसको हाथ पकड़कर रोकते हुए कहा, वो मॉम नीचे नहीं है, हमारे मुंह से गलती से निकल गया था, मैं यहाँ आपकी गाड़ी में छुपकर आई थी और इन दादू को जानती हूँ, ये हमारे साथ लंदन में रहते हैं, अब तो मुझे तुम दोनों की बातें सुनकर और भी शक हो रहा है, जब तक मैं नीचे नहीं देख लेता मेरे दिल को तसल्ली नहीं होगी, आरव ने जवाब दिया। उसने अपना हाथ आरिशा के हाथ से अलग कर दिया था। उसने जब नीचे झुककर देखा तो आयु ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर रखा था। ओ, तो दोनों बच्चे बिल्कुल ठीक कह रहे थे। तुम जो भी हो चलो बाहर आओ, आरव ने कहा। आयु ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ ही कर रखा था। तो आरव बेड के नीचे चला गया। उसने आयु का चेहरा पकड़कर जबरदस्ती अपनी तरफ कर लिया। वहीं आयु ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली थी। टोटो 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 टो। रेहान के बुलाने पर आरव ज्ञान जी के कमरे में आया, जहां दोनों बच्चों को एक साथ देखकर वो हैरान था। आरव बार बार आरिशा के वहां होने की वजह पूछ रहा था तो हड़बड़ाहट में दोनों बच्चों के मुंह से निकल गया कि आरिशा की मॉम बेड के नीचे है। जैसे ही आरव बेड के नीचे आयु को देखने के लिए आया तो उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर रखा था। आरव ने उसका चेहरा पकड़कर अपनी तरफ जबरदस्ती कर लिया। जैसे ही उसने आयु को अपने सामने देखा, आरव एक पल के लिए वहीं पर फ्रीज हो गया। आंखें खोलो अपनी, आरव ने कोल्ड वॉइस में कहा। आयु ने धीरे से अपनी आंखें खोली। वो काफी टाइम बाद आरव को देख रही थी, वो भी इतने करीब से। उन दोनों के बीच आई कांटेक्ट होने लगा तो आयु ने तुरंत अपनी नजरें नीचे कर ली और धीरे से कहा, मुझे तुमसे मिलने का कोई शौक नहीं है, बस ये डेस्टिनी है जो बार बार तुम्हारे सामने लाकर खड़ा कर देती है। आरव को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि आयु उसके सामने है और उसे इस तरह अचानक मिल जाएगी। आयु उससे काफी रूखे तरीके से बात कर रही थी तो आरव ने भरी आवाज में कहा, तुम मान क्यों नहीं लेती इस बात को कि तुम्हारी डेस्टिनी मुझसे जुड़ी हुई है? दूर जाने की कोशिश ही क्यों करती हो तुम मिसेस खुराना?
मैंने कभी दूर जाने की कोशिश नहीं की। तुमने मेरा हाथ छोड़ा था, अब जब छोड़ दिया है तो कभी वापस भी मत पकड़ना, आयु ने गुस्से में कहा। वो बाहर निकलने को हुई तभी आरव ने उसका हाथ पकड़कर उसे वापस नीचे खींच लिया। आयु गुस्से में ऊपर उठ रही थी, उसका सिर बेड के ऊपर लगता उससे पहले आरव ने अपना हाथ वहां लगा लिया। आरव ने धीमी आवाज में कहा, बाहर मत आओ, किसी के आने की आहट हो रही है। जरूर रुद्र और सिमरन ही होंगे, उनके साथ में तुम्हारे मॉम डैड भी हो सकते हैं। तुम उनके सामने गई तो वो दोनों बच्चों के सामने तुम्हारे साथ बुरा बिहेव करेंगे, नफरत करते हैं वो तुमसे। हाँ, तुम्हारी मेहरबानी से, आयु ने नजरें घुमाकर कहा। वो आरव के चेहरे की तरफ देख तक नहीं रही थी तो वहीं आरव के दिल में इस वक्त कुछ और ही चल रहा था। जैसा कि आरव को शक था, तारा सिमरन के साथ उस कमरे में पहुंची। वहां आते ही सिमरन ने इधर उधर देखते हुए कहा, अभी तो आरव यहीं पर थे, पता नहीं अचानक से कहाँ चले गए। मम्मी जी, क्या आप इस लड़की को जानती हैं? मुझे कैसे पता होगा, मैंने इसे पहली बार देखा है, तारा जी ने आरिशा की तरफ देखकर कहा। वो आरिशा के पास आई और उससे बोली, चलो तुम्हारी मॉम के कॉन्टैक्ट नंबर बताओ ताकि मैं उन्हें कॉल करके इन्फॉर्म कर सकूँ। आजकल के बच्चे भी बहुत शैतान होते हैं, न जाने कहाँ से कहाँ चले जाते हैं। लेकिन मुझे उनके नंबर याद नहीं है, आरिशा ने मासूमियत से जवाब दिया, जबकि उसे आयु के नंबर अच्छे से याद थे। ठीक है, फिर तुम दोनों मेरे साथ नीचे चलो, मैं पापा जी से बात करके पूछती हूँ, शायद वो इसे जानते हों, तारा ने जवाब दिया। उसने दोनों बच्चों को अपने साथ ले जाना चाहा, लेकिन आरिशा और आर्या को आयु और आरव की फिक्र सता रही थी, जो इस वक्त बेड के नीचे थे। तारा अपने साथ दोनों बच्चों को ले गई और फिर कमरे का दरवाजा बंद कर दिया था। उनके बाहर आते ही आरव और आयु बेड के नीचे से बाहर निकले। काफी देर तक नीचे रहने की वजह से आरव को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, क्योंकि वो क्लॉस्ट्रोफोबिक था। आयु ने उसकी तरफ देखकर कहा, गहरी सांसें लो, बोलते हुए वो आरव की पीठ सहलाने लगी। आरव को जब थोड़ा बेहतर लगने लगा तब आयु ने उसे पानी दिया। आरव ने आयु की तरफ देखकर कहा, तो वो भी जिंदा थी? हमारी आर्या जिंदा है, उसकी आंखें नम हो रही थी। आयु ने हां में सिर हिलाया और कहा, सब ठीक होकर भी ठीक नहीं है, मैं तुमसे कभी नहीं मिलना चाहती थी, अब जब मिल ही गए हैं तो इस मुलाकात को भूल जाना, मैं जहां से आई थी वहां वापस चली जाऊंगी, तुम्हें कभी हमारी बेटी से मिलने के लिए नहीं रोकूंगी और ना ही तुम मुझे आर्या से मिलने के लिए रोकोगे, पर हमारे बीच कभी कोई रिश्ता नहीं रहेगा, कहकर आयु वहां से खिड़की के तरफ जाने लगी ताकि वो आरिशा को लेकर ओबेरॉय फार्म हाउस से जा सके। आयु ने कुछ ही कदम आगे बढ़ाए होंगे कि आरव ने उसे पकड़कर खींचा और अपने करीब करके कहा, दूर जाने की इजाजत ना पहले थी और ना अब है, बहुत मनमानी कर ली तुमने अपनी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये सच छुपाने की कि मेरी बेटी जिंदा है? मुझे नहीं पता था तुम कहाँ हो, वरना मैं तुम्हें आर्या के जिंदा होने के बारे में बता देता, लेकिन तुम अच्छे से जानती थी मैं कहाँ रहता हूँ, फिर भी तुम नहीं आई। आरव की तरफ देखकर आयु ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा तुम्हें नहीं पता कि मैं कहाँ थी? तुम खुद ही तो छोड़कर आए थे उस इंसान के पास, इतनी जल्दी भूल गए आरव खुराना? चलो मैं याद दिला देती हूँ, मुझे अच्छे से पता था कि तुमसे दूर जाने की परमिशन मुझे नहीं है और ना ही मैं जाना चाहती थी, लेकिन तुमने खुद मुझे छोड़ा था उस फैज खान के पास। तुम अच्छे से जानती हो कि उस वक्त मैं गुस्से में था, मैंने दोनों बच्चों को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा था, सब तुम्हारी वजह से हुआ था, अगर वही गलती मुझसे होती तो तुम भी मेरी शक्ल तक नहीं देखती, आरव ने जवाब दिया। अकेले तुमने अपने बच्चे नहीं खोए थे, वो मेरे भी बच्चे थे, यू नो वॉट, मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी है, आई जस्ट हेट यू आरफ खुराना, आयु ने गुस्से में कहा और आरफ से दूर हो गई। वो वापस खिड़की के पास गई और वहां से जाने लगी। अचानक आयु रुकी और आरफ की तरफ देखकर कहा, और हाँ, मैंने कभी आरिशा को तुम्हारे बारे में ऐसी बात नहीं बताई जिसके बाद वो तुमसे नफरत कर सके। तुम्हारा सही है, ये तो अयान था जो मेरा बच्चा मेरे बारे में जानता था, वरना तो तुम मेरे बारे में क्या क्या बोलते थे वो मुझे आर्या ने सब बता दिया। हाँ, तो मुझे भी पता है तुमने आरिशा को कैसे पाला है। क्या कहा था तुमने अभी कि तुमने आरिशा को ऐसी कोई बात नहीं बताई जिससे वो मुझसे नफरत कर सके? अरे, प्यार और नफरत तो बाद में होगी, वो तो मुझे जानती तक नहीं है। मुझे उसने बताया था कि वो अपने डैड को मिस नहीं करती है क्योंकि उसने कभी मुझे देखा ही नहीं, मेरे बारे में नहीं जानती। तुम ही उसके लिए सब कुछ बन गई ना, आरफ ने गुस्से में जवाब दिया। तुमने मेरे बेटे का नाम बदल दिया, उसकी क्या सफाई दोगे आरफ खुराना? आयु आरफ पर चिल्ला कर डोली। नाम तो तुमने भी बदल दिया, हम दोनों के नाम बदलने का कारण अलग है। मैंने आर्या को खो दिया, इस वजह से मैंने आरव्या का नाम आर्या रखा था ताकि मुझे आर्या की कमी महसूस ना हो, लेकिन तुमने नाम इसलिए बदला ताकि मैं उसे ना ढूंढ सकूं। अब तुम्हारे पास कोई सफाई है मिसेस खुराना? आरव आयु से उसी के लहजे में बात कर रहा था। दोनों एक दूसरे से बच्चों को लेकर बहस करने लगे। वो दोनों अपनी अपनी बात कहकर चुप हुए ही थे कि उन्हें नीचे से किसी तेज आवाज आई। ये जय जी की आवाज थी जो ज्ञान जी पर गुस्सा कर रहे थे क्योंकि उन्होंने आर्या को कमरे में बंद कर दिया था और अचानक एक बच्ची उनके घर पर आ गई थी। आयु दौड़कर दरवाजे के पास गई और उसने सब सुना। उसके बाद आयु ने आरफ की तरफ देखकर रिक्वेस्टिंग वे में कहा, प्लीज हमें यहाँ से बाहर निकाल दो, मॉम डैड को जानते हो ना, उन्हें पता चला तो वो मेरे और आरिशा के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। अच्छा, तो तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए? आरफ ने ईविल स्माइल करते हुए कहा। आयु आरफ के साथ काफी टाइम तक रही थी, इस वक्त उसके दिल में क्या चल रहा था वो अच्छे से समझ गई। उसने आरफ की तरफ तिरछी निगाहों से देखकर कहा, मतलब ऐसी सिचुएशन में भी तुम्हें मुझे ब्लैकमेल करना है? कैसे इंसान हो तुम? बहुत बुरा, अब समझ ही गई हो तो तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है, आरव ने कंधे उचका कर कहा। उसने आयु को अपने करीब खींचा और उसे दीवार के सहारे टिका दिया था। अगले ही पल आरव के होठ आयु के होठों पर थे और वो उसे काफी इंटेंसली किस कर रहा था। आयु को आरव पर बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो ऐसी सिचुएशन में भी उसे ब्लैकमेल कर रहा था, लेकिन उसके पास वहां से निकलने के लिए और कोई रास्ता नहीं था।